पाठ 28 अध्याय 19 जारी। आज हम लैव्य व्यवस्था अध्याय 19 के साथ आगे बढ़ेंगे। यदि परमेश्वर का कोई एक सिद्धांत है जिसका उल्लंघन पूरी दुनिया ने किया है और वह वैश्विक अराजकता का सबसे बड़ा कारण है, पाप के अलावा, जिसे हम शाम के समाचारों में देखते हैं या अपने समाचार पत्रों में पढ़ते हैं या अपने जीवन में अनुभव करते हैं, तो ये वही है जिस पर हमने पिछली बार चर्चा शुरू की थी और आज फिर से चर्चा करेंगे। यह सिद्धांत परमेश्वर के स्वभाव के मूल में है और उसकी प्रकृति में प्रतिबिंबित होता है, और इसलिए इसका उल्लंघन करना उसके साथ सामंजस्य को अस्वीकार करना है। मैं जिस आध्यात्मिक नियम की बात करता हूं वह विभाजन, चुनाव और पृथक्करण का है। नकारात्मक रूप में व्यक्त किया गया नियम यह है कि जो लोग प्रभु से प्रेम करते हैं उन्हें जीवन के लिए अलग रखी गई चीजों को विनाश के लिए नियत चीजों के साथ अनुचित रूप से नहीं मिलाना चाहिए। हमें परमेश्वर द्वारा स्थापित सीमाओं को पार नहीं करना चाहिए और दो चीजों को नहीं मिलाना चाहिए जो भले ही अपने आप में अच्छी और स्वीकार्य हों, उन्हें अलग रखा जाना चाहिए और उन्हें एक साथ नहीं जो रा जाना चाहिए। हमें पवित्र को अपवित्र या यहां तक कि सामान्य, शुद्ध को अशुद्ध के साथ नहीं मिलाना चाहिए। इसके अलावा हमें उन चीजों को फिर से अच्छा या बुरा नहीं कहना चाहिए जिन्हें परमेश्वर बुरा कहता है। हमें परमेश्वर के नियमों को धार्मिक दर्शन से प्रतिस्थापित नहीं करना चाहिए जिन्हें सिद्धांत कहा जाता है। इनमें से कोई भी काम करना तेवेल भ्रम पैदा करना है, और भ्रम पूरी तरह से प्रभु की संपूर्णता और व्यवस्था के गुणों के विपरीत है, और भ्रम आज पूरी दुनिया की स्थिति है ना? इसका कारण कई अलग अलग स्तरों पर अनुचित मिश्रण है। आइए लैव्य व्यवस्था 19 के एक अंश को पुनः पढ़कर अपनी यादों को ताजा करें। लैव्य व्यवस्था 19 का 19 को पुनः अंत तक पढ़ें। चीजों के इस अनुचित मिश्रण के लिए इब्रानी शब्द परमेश्वर की सीमाओं को पार करना किलायम है। इस विषय पर प्राचीन इब्रानी संतों द्वारा बहुत से गहन लेखन किए गए हैं और साथ ही कई काल्पनिक रूपक भी हैं। किलायम अनुचित मिश्रण तेवेल भ्रम का परिणाम है। लैव्य व्यवस्था 19 का 19 निश्चित रूप से तोरा में एकमात्र स्थान नहीं है जहां किलायम के विरुद्ध विशिष्ट आदेश दिए गए हैं। व्यवस्था विवरण 22 में भी अनुचित मिश्रण के और उदाहरण जोड़े गए हैं और कुछ मामलों में केवल दोहराया गया है जिसके परिणाम स्वरूप तेवेल होता है, यानी किलायम हमेशा भ्रम की स्थिति पैदा करता है। यहां कुछ उदाहरण दिए गए हैं। व्यवस्था विवरण 22:5, कोई स्त्री पुरुष का वस्त्र न पहने और न कोई पुरुष स्त्री का वस्त्र पहने, क्योंकि जो कोई ऐसे काम करता है वह तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के सम्मुख घृणित है। और व्यवस्था विवरण 22:9, तू अपनी दाख की बारी में दो प्रकार के बीज न बोना, ऐसा न हो कि जो बीज तूने बोया हो उसकी सारी उपज और दाख की बारी की सारी उपज नष्ट हो जाए। 10, तुम बैल और गधे को एक साथ जोतकर हल न चलाना। 11, तुम ऊन और सनी के कपड़े का मिश्रण न पहनना। मैं आपके साथ इब्रानी संतों के बीच अनुचित मिश्रण के अंतर्निहित सिद्धांतों और समस्याओं की सामान्य समझ को साझा करना चाहता हूं। किलायम, सबसे पहले लैव्य व्यवस्था 19 और व्यवस्था विवरण 22 के बीच तीन प्रकार के मिश्रण या संकरण की बात की गई है। पहला मिश्रण अंगूर के बाग में अनाज बोने से दर्शाया जाता है। आमतौर पर इसका मतलब दो प्रकार के बीजों को एक साथ नहीं बोना होता है। इसे सबसे चरम उदाहरण माना जाता है और यह सबसे गंभीर परिणाम उत्पन्न करता है। जब पौधों की दो प्रजातियों को एक दूसरे के बहुत करीब लगाया जाता है तो इसका परिणाम यह होता है कि जड़ें आपस में झुर जाती हैं। प्रत्येक को अपने पोषण के स्रोत का कुछ हिस्सा दूसरे से मिलता है। ऐसा नहीं है कि अंगूर बेर की तरह दिखने लगेगा, नहीं, बेर पकने वाले अंगूरों का रंग बदल देगा। बाहरी भौतिक विशेषताएं आवश्यक रूप से नहीं बदलती हैं, हालांकि कई आंतरिक विशेषताएं बदल जाती हैं। स्वाद, बनावट, सुगंध और कई अन्य परिवर्तन सीमाओं के इस पारगमन के परिणाम स्वरूप होते हैं।
जहां तक किलायम की श्रेणी या वर्ग का प्रश्न है
तो दो प्रकार के सीस को एक साथ बहुत करीब से रोपना दो अलग अलग प्रजातियों के बेहेमा पालतू खेत जानवरों के बीच अंतर प्रजनन के समान माना जाता है। प्राचीन ऋषियों ने जिस दूसरी श्रेणी का वर्णन किया है उसका प्रतिनिधित्व बैल और गधे को एक साथ जोतने के निषेध द्वारा किया जाता है, जाहिर तौर पर गाड़ी खींचने या खेत जोतने के लिए। यह दो अलग अलग जीवों को एक साथ जोड़ना है ताकि उन्हें किसी तरह का काम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। यहां संकरण किसी तरह के जैविक मिश्रण में नहीं है बल्कि उनकी क्रिया और उनके कार्य में है। समस्या दो अलग अलग प्रजातियों का उपयोग करने में है जिनमें से प्रत्येक को अलग अलग उद्देश्यों के लिए डिजाइन किया गया है, किसी तरह के सामान्य काम के लिए, संभवतः ऐसा काम जो एक के लिए उपयुक्त है लेकिन दूसरे के लिए नहीं। इसीलिए ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रजाति के गुण किसी तरह से बदल गए हैं, बल्कि ऐसा है कि प्रत्येक को जिस कार्य को करने के लिए बनाया गया था वह मनुष्यों द्वारा अनुचित मिश्रण के कारण बदल गया था। तीसरी श्रेणी जिसमें ऊन और लिनन के मिश्रण से बने कपड़े पहने जाते हैं, पहली दो श्रेणियों के बीच एक तरह से बीच का रास्ता है। हालांकि एक तरफ दो रेशे ऊनी और लिनन पूरी तरह से अलग अलग स्रोतों से आते हैं, लेकिन उन्हें एक ही उद्देश्य के लिए कुछ बनाने के लिए एक साथ नहीं बुना जाना चाहिए। इनमें से प्रत्येक मामले में ध्यान देने योग्य एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि पौधों या जानवरों की किसी भी प्रजाति में स्वाभाविक रूप से कुछ भी गलत, बुरा, अशुद्ध या असामान्य नहीं है जो उन्हें वर्जित बनाता है। यह तब होता है जब ईश्वर द्वारा निर्धारित सीमाओं को पार किया जाता है और दो अलग अलग प्रजातियों को मिलाया जाता है, तब समस्या उत्पन्न होती है। और जब हमने स्वच्छ और अशुद्ध पर चर्चा की और पाया कि स्वच्छ जानवर अशुद्ध जानवरों की तुलना में स्वाभाविक रूप से बेहतर या अधिक ईश्वरीय या अधिक सामान्य नहीं थे, तो यह इन निषिद्ध मिश्रणों के साथ भी है। लिनन और ऊन को एक साथ बुनने से शुद्ध लिनन या शुद्ध कपड़े की तुलना में शारीरिक रूप से घटिया कपड़ा नहीं बनता है। और वास्तव में किसी के स्वाद के आधार पर अंगूर की बेल के नीचे और साथ में एक निश्चित किस्म के गेहूं या जौ को उगाकर बनाई गई कुछ अंगूरों से बनी शराब वास्तव में वांछनीय हो सकती है। बल्कि यह केवल ईश्वर का संप्रभु निर्णय है कि अनुचित मिश्रण क्या है। हम दिन भर उन विकल्पों के क्यों की खोज कर सकते हैं और मैं आपसे वादा करता हूं कि अधिकांश उत्तर रूपक प्रकृति के होंगे और आमतौर पर शुद्ध अनुमान होंगे, क्योंकि अधिकांश मामलों में यहोवा ने हमें अपने निर्णय के पीछे क्यों बताने का विकल्प नहीं चुना है। यह मनुष्य को बहुत परेशान करता है, इसलिए हम क्यों की खोज जारी रखते हैं और इसके परिणाम स्वरूप मनुष्य यह निर्णय लेते हैं कि यदि उन्हें कोई तर्क संगत तार्किक क्यों नहीं मिल सकता है तो उस आदेश का पालन करने का कोई अच्छा कारण नहीं है। हम अपने युग में उस तर्क को विशेष रूप से समलैंगिकता और समलैंगिक विवाह के संबंध में देखते हैं। आमतौर पर पूछा जाने वाला प्रश्न यह है कि इससे क्या नुकसान होता है। ऐसा नहीं है कि वे प्रजनन कर सकते हैं। दो लोग निजी तौर पर क्या करते हैं यह उनका मामला है। इसके अलावा यह केवल अज्ञानी लोगों द्वारा पालन किया जाने वाला एक प्राचीन निषेध था जिसका अब 21वीं सदी की आधुनिक और प्रबुद्ध दुनिया में कोई स्थान नहीं है। यदि केवल धर्मनिरपेक्ष दुनिया ही इस दृष्टिकोण के लिए बहस कर रही होती तो मुझे बहुत चिंता नहीं होती, लेकिन दुख की बात है कि आधुनिक चर्च के भीतर अधिक से अधिक लोगों ने उस रुख को अपना लिया है और कुछ मामलों में यह चर्च का सिद्धांत बन गया है। नवीनतम कैथोलिक पोप के चयन पर चर्च के भीतर हुई बड़ी हाथापाई को याद करें, क्योंकि वह समलैंगिक विवाह और गर्भपात के सख्त विरोधी थे या संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए अगले चुनाव को लेकर उभरती लड़ाई में, जहां प्रमुख रिपब्लिकन उम्मीदवार प्रो चॉइस प्रो गे है और उसका मुख्य प्रतिद्वंद्वी मॉर्मन है। चर्च पूरी तरह से असमंजस में है कि कैसे प्रतिक्रिया दी जाए, क्योंकि उसने खुद को दुनिया के तौर तरीकों के साथ इतना मिला दिया है और यह तय कर लिया है कि पुराने नियम के पुराने कानून मर चुके हैं और चले गए हैं। इसके बजाय पैटर्न की खोज पर ध्यान केंद्रित करें और कैसे एक पैटर्न दूसरे के साथ जुड़ता है। तब आपकी समझ बढ़ेगी कि ईश्वर कौन है, वह कैसे काम करता है और वह हमसे क्या अपेक्षा करता है, और आपकी निराशा और संदेह कम हो जाएंगे। इससे पहले कि हम लैव्य व्यवस्था 19 में और अधिक आदेशों के साथ आगे बढ़े, मैं अनुचित मिश्रण पर हमारी चर्चा को समाप्त करना चाहता हूं, जिसका परिणाम स्वरूप भ्रम होता है। इब्रानी में किलायम, जिसके परिणाम स्वरूप तेवेल होता है। आपको नया नियम में कुछ ऐसा दिखाते हुए जो किलायम के कार्य का एक प्रमुख उदाहरण है, और यह सेंट संत पॉलुस का एक कथन है जो सबसे अधिक उद्धृत फिर भी सबसे अधिक गलत समझा जाने वाला है। यह 2 कुरिन्थियों 6:14 में पाया जाता है। अविश्वासियों के साथ बेमेल जुए में न जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म में क्या मेल मिलाप, और ज्योति और अंधकार में क्या संगति। संत पॉलुस कोई नया धर्मशास्त्र नहीं बना रहा था, वह केवल तोरह के किलायम सिद्धांत को बता रहा था, कोई अनुचित मिश्रण नहीं। वास्तव में वह सीधे व्यवस्था विवरण 22:10 का उल्लेख कर रहा था, जहां लिखा है कि हल खींचने के लिए बैल और गधे को एक साथ नहीं लाया जाना चाहिए। यहां 2 कुरिन्थियों में धार्मिकता को कभी भी अधर्म के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए, न ही प्रकाश को अंधकार के साथ मिलाया जाना चाहिए। यहां बात यह है, संत पॉलुस वही कर रहा था जो यीशु ने किया था, और हमें भी वही करना चाहिए जो हमें अपने समय के लिए तोरह को फिर से लागू करने और उसकी फिर से व्याख्या न करने का प्रयास करते समय करना चाहिए। संत पॉलुस एक आदेश लेता है, बैल और गधे को असमान रूप से न जोतो, और इसे विशुद्ध रूप से भौतिक सांसारिक क्षेत्र से आध्यात्मिक स्वर्गीय क्षेत्र में ले जाता है, जिसकी घोषणा करने का हमेशा से इरादा था। ऐसा कैसे है? क्योंकि संत पॉलुस ने गधे और बैल जैसी भौतिक चीजों को असमान जोतने के सिद्धांत को धार्मिकता और अधार्मिकता जैसी आध्यात्मिक चीजों को असमान जोतने के समान बताया है। आस्तिक के लिए जैसे कि इब्रानी के लिए, धार्मिकता और अधार्मिकता प्रकाश और अंधकार के बीच परमेश्वर द्वारा स्थापित एक सख्त परिभाषित सीमा है, और याद रखें प्रकाश और अंधकार, जैसा कि हमने उत्पत्ति में देखा, ओवर और चोशिक, अपने सार में आध्यात्मिक हैं, और न तो भौतिक और न ही आध्यात्मिक सीमाओं को धुंधला या पार किया जाना चाहिए, या किलायम अनुचित रूप से मिश्रित। यही अर्थ है असमान रूप से जुए में न झूठो। आधुनिक विचार में इसका अर्थ है अनुचित रूप से मिश्रित ना हो। आइए अब पद 20 पर चलते हैं। मुझे आशा है कि आप सभी तोरह में यौन संबंधों के बारे में स्पष्ट बातें सुनने के आदि हो रहे हैं, क्योंकि हम इसका बार बार सामना करेंगे। पद 20 से 22 एक ही विचार हैं। यह सब एक ही स्थिति के बारे में है, और चूंकि यह तोरह के 613 नियमों में से एक होने के उच्च दर्जे पर पहुंच गया है, इसलिए हमें शायद यह मान लेना चाहिए कि इन 3 पदों में प्रस्तुत परिदृश्य कुछ नियमितता के साथ हुआ। आइए इस पर करीब से नजर डालें, क्योंकि यह कहानी हमें 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के इब्रानी समाज का एक दिलचस्प पहलू बताती है। उस समय की इब्रानी संस्कृति और आधुनिक युग में पश्चिमी संस्कृति के बीच अंतर के कारण स्थिति की गंभीरता अस्पष्ट है, इसलिए मुझे यह समझाने की अनुमति दें कि क्या हो रहा है। ये आयतें आदेश देती हैं कि अगर किसी दासी लड़की का पहले से किसी दूसरे पुरुष से वादा किया गया हो, तो उसे उसके साथ यौन संबंध नहीं बनाने चाहिए। यहां सौदा है इस मामले में, दास लड़की एक इब्रानी लड़की है जो एक इब्रानी आदमी की मालिक है। इसराइलियों के स्वामित्व वाली अधिकांश दास लड़कियां वास्तव में इसराइली लड़कियां थी। ऐसा क्यों होगा? निर्गमन 21 का 7-11 का अध्यादेश, एक पिता के लिए अपनी बेटी को उस चीज में बेचना पूरी तरह से वैध बनाता है जिसे हम दासता कहते हैं। निर्गमन 21 का 7, और यदि कोई पुरुष अपनी बेटी को दासी के रूप में बेचे तो वह पुरुष दासों की तरह स्वतंत्र न हो जाए। 8, यदि वह अपने स्वामी की दृष्टि में अप्रिय हो जिसने उसे अपने लिए नियुक्त किया है, तो उसे छुड़ाने देना चाहिए। उसके प्रति अपने अन्याय के कारण उसे विदेशी लोगों के हाथों बेचने का उसे अधिकार नहीं है। 9, और यदि वह उसे अपने बेटे के लिए नियुक्त करता है तो उसे बेटियों के रीति रिवाज के अनुसार उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। 10. यदि वह किसी दूसरी स्त्री से विवाह कर ले तो वह उसके भोजन, वस्त्र या वैवाहिक अधिकार में कमी न करे। यदि वह उसके लिए ये तीन काम न करे तो वह स्त्री बिना पैसे दिए ही घर से बाहर चली जाए। अब इस युवा इसराइली लड़की को उसके पिता द्वारा किसी इसराइली व्यक्ति को बेचा जाना आम तौर पर उस परिवार के गरीबी से त्रस्त होने या परिवार के कर्ज में डूबे होने और लड़की द्वारा भुगतान किए जाने का परिणाम था। लेकिन हमें हर शाम जंजीरों में जकड़ी हुई लड़की की मानसिक तस्वीर नहीं बनानी चाहिए और न ही ऐसी लड़की की कल्पना करनी चाहिए जिसे भाग जाने से बचाने के लिए हर शाम खंभे से बांध दिया जाता है। न ही ऐसी लड़की की कल्पना करनी चाहिए जिसे दुर्व्यवहार किया जाता है, भूखा रखा जाता है या पीटा जाता है, या उस व्यक्ति द्वारा यौन सुख की वस्तु के रूप में इस्तेमाल किया जाता है जो अब उसका मालिक है। कानून ने जोर दिया कि उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए। तो यहां हमारे पास एक युवा इब्रानी लड़की का मामला है। हमारे मानकों के अनुसार वास्तव में एक बच्ची एक इब्रानी आदमी को बेची गई जब लड़की परिपक्व हो गई और शादी की उम्र तक पहुंच गई, आम तौर पर 15 साल या उससे ज्यादा। उसके मालिक का दायित्व था कि वह या तो खुद उससे शादी करे, उसे शादी के लिए अपने बेटे को दे दे, या उसे छुराने की अनुमति दे। अब इस विशेष प्रकार के छुटकारे का आम तौर पर मतलब होता था कि अगर कोई आदमी जो पत्नी की तलाश में था इस दास लड़की से शादी करना चाहता था तो दास मालिक को उसे देना पड़ता था। लेकिन एक कीमत पर, छुटकारे की कीमत पर। प्रक्रिया यह थी कि इच्छुक व्यक्ति दास मालिक से छुटकारे की कीमत पर मोलतोल करता था। एक बार सहमति हो जाने पर लड़की अब कानूनी तौर पर अपने भावी पति के नाम हो जाती थी, हालांकि भावी पति द्वारा दास मालिक को छुटकारे की रकम लाने में आमतौर पर कुछ समय लग जाता था। उस दौरान दास लड़की दास मालिक के साथ रहती थी, यद्यपि उसे बेच दिया गया था। यह ले अवे योजना का प्राचीन इब्रानी संस्करण था। हालांकि कानूनी तौर पर वह एक अविवाहित लड़की और एक दासी ही रही। अगर कोई दूसरा अलग आदमी आता और लड़की को बहकाता तो समस्या होती। समस्या यह थी कि लड़की अब खराब माल बन चुकी थी। भावी पति को उम्मीद थी कि वह कुंवारी होगी, लेकिन चूंकि वह अब कुंवारी नहीं थी इसलिए उसका भावी पति उसे स्वीकार नहीं कर सकता था। वह शादी रद्द कर देता और पूरा सौदा रद्द कर देता। इसका मतलब है कि लड़की के मालिक को वह पैसा नहीं मिलेगा जिसकी उसे उम्मीद थी। पद 20 के अंत में कहा गया है कि इसके परिणाम स्वरूप क्षतिपूर्ति होगी। इस शब्द को अपनी बाइबल में खोजने में अंधे मत हो जाइए, क्योंकि यह वहां है ही नहीं। इसके बजाय मेरे सीजेबी की तरह आपकी बाइबल में दंड या जांच या पूछताछ या ऐसा ही कुछ लिखा होगा। इब्रानी विद्वानों ने सदियों से उस अनुवाद को संदेह की दृष्टि से देखा है। उस युग के इब्रानी सांस्कृतिक संदर्भ में वर्णित स्थिति में उनमें से कोई भी शब्द अर्थ नहीं रखता। पिछले कुछ वर्षों में जैसे जैसे इब्रानी से संबंधित भाषा के समानार्थी शब्दों के अध्ययन में प्रगति हुई है, कई अजीब और दुर्लभ इब्रानी शब्दों का सही अर्थ बेहतर तरीके से ध्यान में आया है। समानार्थी शब्द का सीधा सा मतलब है कि एक भाषा का शब्द दूसरी भाषा के शब्द से निकटता से संबंधित है। इसलिए यदि कोई किसी पुरानी और संबंधित भाषा में किसी शब्द के अर्थ के बारे में निश्चित हो सकता है तो वह अर्थ आम तौर पर उसकी बहन भाषा में उसके समानार्थी शब्द में स्थानांतरित किया जा सकता है। हमारे यहां ठीक यही स्थिति है, क्योंकि विचाराधीन इब्रानी शब्द पूरी बाइबल में केवल यहीं और यहीं दिखाई देता है, लेकिन एक समानार्थी शब्द की खोज की गई है। इब्रानी शब्द जिसका सामान्यतः दंड या पूछताछ के रूप में अनुवाद किया जाता है वह है बिकोरेट। और अब भाषा विशेषज्ञों को पता है कि बहुत से इब्रानी शब्द अक्कादियन भाषा से लिए गए हैं। अक्कादियन में हमें बाकारू शब्द मिलता है और बाकारू का अर्थ है दावे को पूरा करना, यानी क्षतिपूर्ति करना। क्षतिपूर्ति एक ऐसा शब्द है जिससे अधिकांश फ्लोरिडा वासी परिचित हैं, क्योंकि हमारे यहां अक्सर तूफान से नुकसान होता है, क्योंकि यह गृहस्वामियों के बीमा से संबंधित है। कानूनी भाषा में बीमा खरीदने वाले व्यक्ति को कुछ जोखिमों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति दी जाती है। अब यह आम तौर पर माना जाता है कि बिकोरेट अक्कादियन बाकारू का इब्रानी समानार्थी है, इसलिए यहां हमारी कहानी में जो विचार व्यक्त किया जा रहा है वह यह है कि जिस व्यक्ति ने दास लड़की को बहकाया था, जिसे किसी अन्य व्यक्ति को एक छुटकारे की कीमत पर देने का वादा किया गया था, अब वह दास मालिक और उस भावी पति के बीच तय की गई पूरी कीमत चुकाने के लिए जिम्मेदार था, जिसने अब सौदे से हाथ खींच लिया है। दास मालिक ने बहकाने वाले का सामना किया होगा, दावा किया होगा और क्षतिपूर्ति की मांग की होगी। अब यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि भावी पति के साथ इतना अन्याय नहीं हुआ, दास मालिक के साथ हुआ, क्योंकि वह अपनी लड़की के लिए वादा किए गए पैसे से वंचित हो जाता, इसलिए बहकाने वाले को दास मालिक को हर्जाना देना पड़ा। भावी पति के बारे में क्या, वह तो बस किस्मत से बाहर था। भावी पति ने बस एक मंगेतर खो दी, जिसका मतलब था कि उसे दूसरी मंगेतर खोजने के लिए सारी परेशानी उठानी होगी। कहानी खत्म। लेकिन उस लड़के की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई जिसने उस लड़की को बहकाया जो पहले से ही किसी और आदमी से वादा की गई थी। पद 21 के अनुसार बहकाने वाले को वेदी पर एक बलिदान भी चढ़ाना था, विशेष रूप से उसे तंबू में एक आशम बलिदान, एक प्रतिपूर्ति भेंट चढ़ाना था, क्योंकि उसने न केवल एक अविवेकपूर्ण कार्य किया था जिसने मंदिर को नुकसान पहुंचाया और उसका मूल्य कम कर दिया, जिससे दास स्वामी की संपत्ति को हानि पहुंची। उसने यहोवा के विरुद्ध एक आदेश का उल्लंघन करके अपराध किया, और क्योंकि आशम पाप पूर्ण कार्य करने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए स्थापित किया गया था, यह आम तौर पर काफी महंगा था, इसलिए बहकाने वाले ने अपनी वासना के लिए काफी कीमत चुकाई, और वैसे भी उसे पता चलता है कि उसे लड़की नहीं मिली। ओह, वह कर सकता था मुझे लगता है, लेकिन अब उसे एक अतिरिक्त बातचीत की गई दुल्हन की कीमत चुकानी होगी, क्योंकि उसने दास मालिक को जो पैसा दिया वह एक दंड था, खरीद मूल्य नहीं। यह बहुत पहले की इजरायली संस्कृति की एक छोटी सी लेकिन दिलचस्प, मुझे लगता है, झलक है। जैसे ही हम पद 23 में आगे बढ़ते हैं, हम एक और नियम में प्रवेश करते हैं जो कुछ समय तक प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि इसमें खेतीबारी शामिल है, ऐसा कुछ जो इसराइल के कनान में बसने तक लागू नहीं होगा। कानून यह है कि जब इसराइल फलदार वृक्ष लगाता है, और बाइबल में इसका मतलब वास्तव में किसी भी तरह के वृक्ष से है जो कुछ खाने योग्य फल देता है, मेवे, जैतून, खजूर, संतरे, जो भी हो, तो पहले 3 वर्षों तक वृक्ष की कोई भी उपज नहीं खानी चाहिए। मैं यहां बहुत गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन जब कोई मूल इब्रानी को शाब्दिक रूप से लेता है तो विचार फल तोड़ने और खाने पर प्रतिबंध के बारे में नहीं है, बल्कि इसे नष्ट करने के बारे में है, बल्कि यह पैर की छटाई या छंटाई के बारे में है। दूसरे शब्दों में, पैर को परिपक्व होने और उत्पादक होने के लिए आवश्यक छटाई के कारण छटाई प्रक्रिया के दौरान फल नष्ट हो जाते हैं, इसलिए पहले 3 वर्षों के लिए युवा शाखाओं को बहुत अधिक छटाई करनी होती है, और जो फल अन्यथा उग सकते थे वे नष्ट हो जाएंगे। जाहिर है कि पेड़ लंबे समय में बेहतर उत्पादक होंगे। फिर 4th वर्ष में अच्छी फसल की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन फलों की वह पूरी पहली कानूनी कटाई परमेश्वर की स्तुति के लिए अलग रखनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, 4th वर्ष में फसल यहोवा के लिए पवित्र अलग रखी गई मानी जाती है, और इस प्रकार यह उसे दे दी जाती है। इसका मतलब यह था कि इसे किसी अनिर्धारित तरीके से उत्सव के दौरान परमेश्वर को चढ़ाया जाता था, और निश्चित रूप से उत्सव के इस समय के दौरान खाया जाता था, लेकिन संभवतः लेवियों और पुजारियों द्वारा खाया जाता था। 4th वर्ष का फल पवित्र और अलग रखा जाता था। यह पवित्र संपत्ति थी, यह परमेश्वर का था, जिसका मतलब था कि इसका कुछ हिस्सा जला दिया जाता था और बचा हुआ पवित्र हिस्सा पुजारी को जाता था। फिर 5वें वर्ष में फलों की सामान्य कटाई शुरू हो सकती थी। इस 5 वर्षीय प्रगतिशील प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है, हमें पद 25 में बताया गया है कि ऐसा इसलिए है ताकि पैरों की फसल की उपज में वृद्धि हो। इसे द्वैत की वास्तविकता की स्थितियों में से एक के रूप में देखा जाता है। यानी कि बागवानी की एक वास्तविकता यह थी कि पैरों को पहले 3 वर्षों तक बिना फलों की कटाई किए बढ़ने देने से पैर अपने जीवन काल में बेहतर उत्पादक बन जाते थे। दूसरी ओर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से परमेश्वर की इस आज्ञा का पालन करने से यहोवा यह सुनिश्चित करेगा कि उपज एक आशीर्वाद के रूप में अलौकिक रूप से बढ़े। लेकिन फसल की वृद्धि आशीर्वाद प्राप्त करने का एकमात्र पहलू नहीं था, शालोम भी बढ़ा था। शालोम जब समग्र कल्याण की स्थिति के रूप में लिया जाता है, खुशी, शांति, स्वास्थ्य और परमेश्वर से अनुग्रह प्राप्त करना, तो यह कुछ ऐसा है जो केवल परमेश्वर ही दे सकता है। मूर्ति पूजक कनानी और परमेश्वर का भय मानने वाले इजरायली दोनों ही इस छठाई की प्रथा का पालन करने और 4वें वर्ष तक कटाई न करने से समान मात्रा में फल प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन केवल वही व्यक्ति जो परमेश्वर से प्रेम करता है शालोम प्राप्त कर सकता है, और यही उन सभी में सबसे बड़ा आशीर्वाद है। पिछले हफ्ते किसी ने एक बढ़िया सवाल पूछा था, या शायद सवाल से ज्यादा और एक विचार की अभिव्यक्ति के तौर पर, क्या हम कह सकते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसकी आज्ञा मानते हैं उन्हें इनाम मिलेगा, सांसारिक इनाम, जबकि जो ऐसा नहीं करते उन्हें नहीं मिलेगा। निस्संदेह शास्त्र ये स्पष्ट करते हैं कि जो लोग तोरह का पालन करते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं और जो यीशु को अपने जीवन का प्रभु बनाते हैं, वे अपने जीवन के फल में वृद्धि को आशीर्वाद के रूप में देखेंगे, और जो ऐसा नहीं करते उनके लिए आशीर्वाद रोक दिया जाएगा। इसलिए हमारे लिए यह लाभदायक है कि हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहें, ताकि हमारे सांसारिक जीवन में भी हमें बेहतर जीवन का आशीर्वाद मिले। लेकिन इस अवधारणा को आसानी से गलत समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि इज़राइल द्वारा विजय प्राप्त करने के बाद भी उस भूमि पर रहने वाले कनानियों ने देखा कि इज़राइली अपने फलों के पैरों के साथ क्या करते हैं और उसका अनुकरण करते हैं, अर्थात उन्होंने देखा कि उन प्रथाओं का पालन करने से जिनकी हमने अभी चर्चा की है कि पैर अधिक प्रचुर मात्रा में और दीर्घकालिक उत्पादक बन जाएंगे, तो कनानियों को बेहतर फल की फसल मिलेगी, भले ही वे यहोवा की आराधना नहीं करते थे। दूसरी ओर इसराइलियों को बेहतर फल की फसल मिलने के साथ साथ यहोवा से आध्यात्मिक आशीर्वाद भी मिलेगा, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया उसके पीछे उनका उद्देश्य सही था। मेरे उदाहरण में कनानियों को केवल अधिक फल चाहिए थे, और इसे पाने के लिए उन्होंने जो कुछ भी करना पड़ा वह किया। इसराइल ने परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बनने की कोशिश की, और इसका परिणाम बहुतायत था। फलों के पैरों के संबंध में वे दोनों एक ही काम करते थे, लेकिन इसराइल को परमेश्वर का आशीर्वाद मिला और कनानियों को नहीं। क्यों? उद्देश्य। इसीलिए हम कई बार देख सकते हैं कि सबसे लालची, निर्दयी, अधर्मी लोग भी बड़ी सफलता और शानदार जीवन जीते हैं, अक्सर उनके अनजाने में, व्यापार और प्रबंधन के शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करके। लेकिन ये परमेश्वर का आशीर्वाद पाने जैसा नहीं है। हमें परमेश्वर का आशीर्वाद मांगना चाहिए, क्योंकि अक्सर जो समृद्धि और बहुतायत दिखती है वह बस मूर्खों का सोना और शैतान का जाल है। मैं आपको यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यह मनुष्य के अंदर एक बुरी प्रवृत्ति और एक अच्छी प्रवृत्ति के सिद्धांत को समझने की पहेली में एक और छोटा सा टुकड़ा जोड़ता है। जो अच्छा लगता है उसे करना अच्छा नहीं है अगर प्रेरणा गलत है। अच्छे लोग जो अच्छे काम करते हैं लेकिन ईश्वर को नहीं जानते, वास्तव में ईश्वर की नज़र में बुरे काम कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका उद्देश्य ईश्वर निर्देशित नहीं है, यह स्वयं निर्देशित है, और यही कारण है कि यीशु को हमारे प्रभु के रूप में पाना इतना महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमारे अच्छे झुकावों को सही तरीके से निर्देशित करने का एकमात्र तरीका उनके द्वारा ही है। उसके बिना हमारी भलाई की कोशिश भी बुरी है। उसके बिना हमारे इरादे स्वाभाविक रूप से गलत हैं। पद 26 में यह नियम दोहराया गया है कि किसी इब्रानी को उसके खून से बनी कोई भी चीज नहीं खानी चाहिए, बस उन्हें जानवरों का खून नहीं पीना चाहिए या जानवरों के खून से खाना नहीं बनाना चाहिए। और इसके लिए यह भी जरूरी था कि जानवर को मारा जाए और उसका मांस एक खास तरीके से तैयार किया जाए। उसका खून मांस से पूरी तरह से निकाला जाना चाहिए। फिर भी कृपया याद रखें कि खून के बारे में यह नियम सिर्फ जानवरों के खून को खाने से मना करने से कहीं ज्यादा है। जानवर को कैसे, कहां और क्यों मारा जाता है, यह भी तस्वीर का हिस्सा है। इस समय तक किसी भी कारण से पालतू जानवर को मारने की एकमात्र जगह तंबू वेदी थी, भले ही भोजन के रूप में मांस खाने का इरादा हो। बाद में इसी आयत में भविष्यवाणी या भविष्य बताने का अभ्यास न करने का नियम भी दोहराया गया, यानी जादू का अभ्यास न करना। फिर भी जैसा कि हम पूरे पुराने नियम में पाएंगे, इब्रानियों को उनके भीतर छिपी बुरी प्रवृत्तियों द्वारा जादू टोने की आग की ओर पतंगे की तरह खींचा गया था और उन्हें ऐसी चीजों के लिए यहोवा द्वारा कठोर रूप से अनुशासित किया गया था। हमेशा से ही भविष्यवाणी और भाग्य बताने का उद्देश्य भविष्य जानना था, और इसराइल के पड़ोसियों ने, जैसा कि उस युग की सभी जात संस्कृतियों ने किया, जादू टोने का भरपूर उपयोग किया। भविष्य जानना हमेशा से ही कुछ ऐसा रहा है और हमेशा रहेगा जिसकी मानव जाति लालसा करती है। हालांकि परमेश्वर कहता है कि वह अपने भविष्य वक्ताओं के माध्यम से हमें भविष्य का वह हिस्सा बताएगा जो वह चाहता है, लेकिन कुल मिलाकर परमेश्वर के भविष्य वक्ताओं ने इसराइल के लिए बहुत कम नई जानकारी प्रदान की। जब परमेश्वर ने भविष्य वक्ताओं द्वारा लोगों से बात नहीं तो लोगों से अपेक्षा की जाती थी कि वे विश्वास में आगे बढ़े और माउंट सिनाई पर निर्धारित परमेश्वर के स्पष्ट रूप से परिभाषित नियमों और सिद्धांतों का पालन करें। हम विश्वासियों को भी ठीक यही करना है। हमें कभी कभार ही पवित्र आत्मा से किसी प्रत्यक्ष समस्या का सीधा उत्तर मिलता है। हमें अक्सर विश्वास में आगे बढ़ते रहना चाहिए और दिशा के लिए अपरिवर्तनीय शास्त्रों का संदर्भ लेना चाहिए, भले ही यह बहुत आसान लगे अगर परमेश्वर हमें बता दे कि हमें क्या करना है। इसके बाद पद 26 में अपने सिर के बालों को गोल करने या अपनी दाढ़ी के बालों को नोचने या शोक के रूप में अपने शरीर को काटने या टैटू बनवाने के खिलाफ आदेश दिया गया है। अब ये सभी चीजें मानक कनानी सांस्कृतिक मानदंड थे। वास्तव में हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि व्यवस्था में हम जो अधिकांश निषेध पाएंगे वे किसी न किसी मूर्ति पूजक राष्ट्र की किसी न किसी मूर्ति पूजक प्रथा का मुकाबला करने के लिए हैं। इसका मतलब यह है कि ये सैद्धांतिक या काल्पनिक मुद्दे नहीं हैं जिन्हें यहोवा संबोधित कर रहा है, बल्कि ये चीजें वास्तव में घटित हो रही थीं और परमेश्वर चाहता था कि इब्रानियों को उनसे बचना चाहिए। पद 29 जैसा कि प्रतीत होता है उससे थोड़ा अलग है। इसमें कहा गया है कि अपनी बेटी को वेश्या बनाकर अपवित्र न करें, और ऐसा इसलिए ताकि देश वेश्यावृत्ति में न फंस जाए। यह धार्मिक वेश्यावृत्ति को संदर्भित करता है, एक और मानक कनानी प्रथा। दूसरे शब्दों में एक आदमी अपनी बेटी को किसी धार्मिक समारोह के लिए पुजारी को नहीं दे सकता था जिसमें यौन क्रियाएं शामिल हों, न ही उसे अपनी बेटी को सामान्य वेश्यावृत्ति के लिए बेचना था ताकि तंबू में बलि के लिए बलि का जानवर खरीदने के लिए पैसे मिल सके। चेतावनी यह है कि यदि इसराइल औपचारिक वेश्यावृत्ति में बहकने लगे तो वादा किया गया देश भ्रष्टता में गिर जाएगा। मैंने कई मौकों पर उल्लेख किया है कि परमेश्वर की नजर में भूमि उन लोगों से जुड़ी है जो उस भूमि पर रहते हैं। लोग और भूमि जैविक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शास्त्रों में अक्सर, जैसा कि यहां है, शब्द भूमि स्थान और लोगों को एक पूर्ण इकाई के रूप में संदर्भित करता है। ध्यान दें कि पवित्र सेक्स के खिलाफ इस निषेध के तुरंत बाद परमेश्वर कहते हैं, मेरे सप्त का पालन करो और मेरे पवित्र स्थान का सम्मान करो। यह इब्रानी साहित्यिक संरचना एक को टालने और इसके बजाय दूसरे को करने का संकेत देने का एक तरीका है। तो विचार यह है कि धार्मिक सेक्स की पेशकश न करें मुझे सम्मान देने के लिए एक गुमराह तरीका है। इसके बजाय अगर आप मुझे सम्मान देना चाहते हैं तो मेरे सप्त का पालन करें और परमेश्वर के सांसारिक निवास स्थान तंबू के लिए अत्यधिक सम्मान रखें। और इसराइल ने ये सभी चीजें परमेश्वर के खिलाफ की और इससे भी ज्यादा,
यही वजह है कि उन्हें अंततः भूमि से निष्कासित कर दिया गया और पूरी धरती पर बिखेर दिया गया। पद 31 में आत्मा माध्यमों और जादूगरों से दूर रहने का निषेध है। कुछ अनुवादों में परिचित आत्माओं या भूतों से दूर रहने के लिए कहा गया है। यह विचार यह है कि मृतकों की आत्माओं के साथ संवाद करने का प्रयास न किया जाए। तो हमें इसका क्या मतलब निकालना चाहिए? क्या मृतकों के साथ संवाद करना संभव है?
खैर, बाइबल हमें इस बारे में बहुत कम बताती है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। पुराने नियम में इस विषय पर व्यावहारिक रूप से कुछ भी नहीं कहा गया है। जैसा कि मैंने कई मौकों पर उल्लेख किया है कि तोरह या पुराने नियम में कहीं भी मरने और स्वर्ग जाने की कोई अवधारणा नहीं है।
ऐसा नहीं है कि इब्रानियों को मृत्यु के बारे में आश्चर्य नहीं था और उसके बाद क्या हुआ इसकी चिंता नहीं थी। सभी मनुष्यों की तरह वे और हम भी मृत्यु और उसके बाद क्या होता है इस बारे में चिंतित थे। लेकिन हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है कि सिर्फ इसलिए कि परमेश्वर अपने लोगों को मृतकों की आत्माओं को बुलाने के लिए माध्यमों और जादूगरों को काम पर रखने के खिलाफ चेतावनी देता है, इसका यह मतलब नहीं है कि भूत, इस अर्थ में कि भूत मृत व्यक्तियों की आत्माएं हैं, असली है। बल्कि समस्या शास्त्रीय दृष्टिकोण से यह प्रतीत होती है कि एक व्यक्ति जो मानता है कि वह मृतकों की आत्मा से संपर्क कर सकता है, वास्तव में शैतान के इशारे पर काम करने वाले एक राक्षस से संवाद करता है। यह शैतान द्वारा एक तरह का लालच और धोखा देने वाला खेल है और एक राक्षस एक मृत व्यक्ति की आत्मा नहीं है। एक राक्षस, मेरी सबसे अच्छी बाइबल समझ के अनुसार, पहले स्वर्ग का एक दूत होता है जो शैतान के विद्रोह के प्रति अपनी वफादारी के कारण अनुग्रह से गिर गया था। उस दिन से शैतान के बाद जितनी संख्या में दुष्टात्माएं आती हैं, उनकी संख्या तय हो गई है।
मृत्यु और मृतकों की आत्माओं का विषय बहुत बड़ा है। यह कहना पर्याप्त है कि इस पर विश्वास, यहां तक कि इब्रानी संस्कृति के भीतर भी विकसित और रूपांतरित हुए और कभी भी पूरी तरह से एक समान नहीं थे। ठीक वैसे ही जैसे ईसाई धर्म के भीतर मृत्यु के बाद के विश्वास सार्वभौमिक नहीं है। मैं इसे संक्षेप में बताने के लिए पर्याप्त समय लेना चाहता हूं, क्योंकि न केवल यह विषय अपने आप में दिलचस्प है, बल्कि यह हमारे विश्वास और शारीरिक मृत्यु के बाद क्या होता है इस बारे में हमारी समझ के लिए भी प्रासंगिक है।
इसलिए हम अगले सप्ताह इस विषय से शुरुआत करेंगे।